नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कृषि में प्रौद्योगिकी संस्कृति लाने पर बल दे रही है। श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी को पारंपरिक प्रणालियों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के तरीकों पर सुझाव आमंत्रित किए।
एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अनिश्चितता के इस युग में प्रासंगिक रहने का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता ही है। श्री सिंह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित रक्षा और समुद्री संवाद का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन हुआ है, साथ ही समुद्री गतिविधियों में निरंतर वृद्धि भी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश इस महीने के अंत तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। उड़ीसा के कटक में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 57वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि सुरक्षा बल तिरुपति से पशुपतिनाथ तक फैले लाल गलियारे के माओवादियों के सपने को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी बंदरगाहों की सुरक्षा CISF को सौंपने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 के दौरान विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने माल्टा के विदेश मंत्री इयान बोर्ग और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रितेश रामफुल के साथ बातचीत की। उन्होंने भूटान के विदेश मंत्री लियोम्पो डी एन धोंगियल और श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हैरत से भी मुलाकात की। इसराइल और अमरीका की संयुक्त सेनाओं और ईरान के बीच संघर्ष का आज 8वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी समझौते से इनकार करते हुए उसके बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने कहा है कि कुछ देशों ने अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इस संकट के लिए अमरीका को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। जारी संघर्ष में अब तक ईरान के 1200 से अधिक लोग मारे गए, जबकि इसराइल में लगभग 1 दर्जन लोग और 6 अमरीकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने शुक्रवार को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के एक स्थल पर हुए इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। घाना सशस्त्र बलों के अनुसार दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात घाना के 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए स्पेनिश ठिकानों के उपयोग की अनुमति देने से इनकार करने के बाद अमरीका और स्पेन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इसके जवाब में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के साथ व्यापार निलंबित करने की धमकी दी है। जारी संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में काफी उछाल आया है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने वैश्विक आर्थिक प्रभाव की चेतावनी देते हुए कहा है कि खाड़ी देशों से ऊर्जा निर्यात में गिरावट आ सकती है और कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। सरकार ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC को निर्देश दिया है कि वे 4 सप्ताह के लिए समाचार चैनलों की टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स TRP की रिपोर्टिंग को तत्काल निलंबित कर दे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कुछ टीवी समाचार चैनल इसराइल ईरान संघर्ष के बीच अनावश्यक सनसनीखेज और अटकलबाजी वाली सामग्री प्रदर्शित कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कवरेज से लोगों में दहशत फैल सकती है। सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम कल घोषित कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने बताया कि 659 पुरुषों और 299 महिलाओं सहित कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। अनुज अग्निहोत्री ने पहला, राजेश्वरी सुवे ने दूसरा और एकांश ढुल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में चीन के ली शी फेंग को 21-13, 21-16 से हराकर पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।